ये अध्याय हम लोगों का समाप्त करेंगे। आप लोग अच्छी तरह से कल हमको बतलाएंगे चतुर्थ धाम चतुर्थ ज्ञान साधन में आप लोगों ने क्या समझा।
नमो महावचनाय कृष्ण प्रेम सदाय कृष्णाय हे कृष्ण करुणा सिंधो गोपेश गोपिका संत आराधा सप्तम चंद्रो रंगी राधे अन्नचाता मंदिर कुटेन्द्र कृपामयी स्वाम शरणं प्रपन्ना गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै कदाहि कृष्णाय कृष्णभक्ताय सर्वभक्ताय यन्ताभ्रजं तमन्ते तमते च कृष्णं दैतान्यो गिरः काकल्याव पुत्रेति तन्मय सदा करो भजनहस्य पंचम चार जाम हो गया और चार दिन बाकी था और पंचम हम लोग सके और कहा था बदलाया हो गया छह सौ बजे साढ़े पांच साढ़े छह बजे अपराह्न काली कृष्णा शक्ति निष्ठा हो गई तो रुचि हुई अब ये आसक्ति। सबसे पहले श्रद्धा, श्रद्धा के बाद में अनवृत्ति साधु संग यहां तक दो, इसके बाद में निष्ठता भक्ति और अंत में कृष्णा शक्ति। आसक्ति यहां तक उपलब्धि क्वेश्चन ये साधक बने साधकों का कल्याण कैसे हो
तो मानसिक
उसके भजन के साथ साथ में राधा नंदा भक्ति के लिए ये कर रहे हैं जो उन चीज उन ग्रंथों में नहीं है उसको भी स्पष्ट रूप से लेकर के कार्य। माधुर्य कादम्बिनी में ये सब अनर्थ के संबंध में है जो किंतु अनर्थ कैसे दूर होंगे कौन कौन से कैसे ये सबको स्पष्ट रूप से बताया। जैसे बताया आत्मवृद्धि शरीर में देहात्मवृद्धि इसी से ही समस्त निकल है तो ये जाएगी कैसे तो उसके लिए स्पष्ट नहीं हो निरंतर श्रवण कीर्तन स्मरण साधु अब इसी को श्रीमद् भागवत से लेकर के उन्होंने और स्पष्ट करके दिखलाया। उन लोगों की सब समय चेष्टा यही प्रिय उनका भगवतार मूर्ति बनाया उसमें भी जैव धर्म चैतन्य शिक्षा मत छोटी सी पुस्तक और जितनी भी पुस्तक है जिनके कल्याण के लिए, जैसे हरिनाम चिंतामणि में हरिनाम में जितनी बाधाएं विघ्न प्रारंभ से हो सकती हैं, कैसे नाम में रुचि होगी, आसक्ति होगी, भाव होगा, उसमें स्पष्ट रूप से दिखलाया है। इसमें केवल अनर्थ सबों को अलग अलग से सबको बतलाया, बतला करके कैसे दूर होगा और भागवत कैसे कह रहे हैं, भागवत से इसका सामंजस्य क्या है, स्पष्ट रूप से माधुर्य कादंबिनी में भागवत के इन सबका श्लोकों का न लेकर के केवल भक्ति स्वामी सिंधु के कदाचित दो एक श्लोकों को स्पष्ट किया। आज इन्होंने श्रीमद् भागवत से सब श्लोकों को लेकर के और सब उसको पठन करके स्पष्ट रूप में दिखा अनर्थ क्या क्या है, कैसे ये दूर, उसमें श्रद्धा में कैसी कैसी स्थिति होती है, साधु को संग में भजन करते 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 और निश्चिता भक्ति में क्या स्थिति होती है, फिर निश्चिता में कर दिया, फिर इसके बाद में भी दूर हो गया तो फिर निष्ठा के बाद में रुचि में क्या क्या स्थिति, रुचि कैसे होगी, इसके संबंध में बताया। यदि गंभीर रूप से इन चीजों को पढ़े तो वो उसमें आएगा, जरूर आएगा, दिन रात चिंतन करें, नए नए कितने विचार मिल रहे हैं जो उन ग्रंथों में नहीं, और उनमें जो है उसमें भी नए विचार हैं, किंतु ये सब जैसे अभी ये बतलाएंगे श्रीमता स्वकथा ये है और इसमें वे सत्य अनुकंपा है, ये सब श्लोकों में जो क्या क्या गुण रस छिपा है उसको भी इसमें थोड़े से लोग बतला है, किंतु श्लोकों को देखने से पता लगता है कि कितना गंभीर उनका है, वो जरूर उसको उपलब्धि की। तो इसलिए मैं कैसे प्रवेश करेंगे, उन चीजों को कैसे समझेंगे, ये सब इसमें विनोद ठाकुर जी ने अनुभव करके ये सब चीजों को दिया। भागवत से उनका क्या संपर्क है, भागवत उसके संबंध में क्या था, भागवती हम लोगों का मूल है, तो उन सब चीज को इन्होंने ये सब चीज को स्पष्ट करके दिया है, अनर्थों को और अलग से स्पष्ट, और वो अनर्थ कैसे जाएंगे इसको भी नहीं। सब आचार्यों में अपना अपना वैशिष्ट होता है, भक्ति विनोद ठाकुर जी पीछे के आचार्य, इसलिए सब जितने रूप गोस्वामी से लेकर के विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, नरोत्तम ठाकुर इत्यादि होते हैं, उन सबका सार लेकर के तब इसमें भजन का एक पद्धति बनाया, इस पद्धति को लेकर के हम चलेंगे। इसमें प्रार्थना करने की विधियां कर दी गई, कैसे प्रार्थना, यदि और बात छोड़ो भागवत के इसी श्लोक को ही ले लें, सत्यनुकंपा सुषमा जो अभी आएगा बस उसी से ही भगवत भजन हो जाएगा, और कोई श्लोक की कोई जरूरत ही नहीं, बस एक श्लोक उनको ले तब तो। इसलिए बार बार कहा जाए, एक आदमी आज से 10 वर्ष पहले कहा जिस तक सुनना जो पत्र, और फिर आज भी कह रहा देखो अभी तुमको बतला रहे हैं, अभी सब पूर्ण करके ठीक से चलो, तो वही बार बार तो वही कोशिश कर रहा है। हमारे आचार्यों जी ने जो कहा है अपने शब्द में उन्होंने अपने एक रूप में उन्होंने अपने तरीके से कहा, तो वही है कृष्ण के चरणों में प्रेम, इसलिए कोई नई बात नहीं है, नई होने पर भी अपने जिस विचारधारा के कारण इसमें न और भागवत का जस्ट इसमें केवल भागवत का भागवत चार और कृष्ण आसक्ति, बिना आसक्ति कैसे हो, आसक्ति कैसे हो, जब तक अपना स्वरूप उदित न हो कल्पना करने से नहीं होगा। माधुर्य कादम्बिनी इत्यादि पढ़ने से ऐसा लगता है कि हम अपने स्वरूप का जो अंतःचिंतित स्वरूप है, जिसको सिद्ध शरीर है, उसी के चिंता करके उनके अनुसार में हम यदि करें तो हमको आसक्ति हो जाएगी। किंतु इसके पढ़ने से ऐसा मालूम होता है जैसे ऐसे नहीं, कल्पना से नहीं होगा। किसी प्रकार से अपना स्वरूप उदित होगा, अनर्थ दूर होने पर और स्वरूप उदित होने पर आसक्ति अपने आप होगी, ये इनका कहने का कारण। इसलिए करें कि अपना स्वरूप उदित हुआ नहीं और किसी को भगवान में आसक्ति हो जाएगी, ये संभव है? तब तक कल्पना रहेगी, कोई कल्पना रहे, अपना स्वरूप नहीं है, कृष्ण का स्वरूप पता नहीं, कृष्ण को ऐसे जैसे हम एक हैं उनको पुरुष मान लिया, अपने के एक साधक मान लिया, कुछ संबंध हुआ नहीं, संबंध ये शरीर जड़ में बुद्धि आत्मबुद्धि है तो कृष्ण से संबंध हो गया, हो जाएगा कभी लाख जन्म में भी नहीं। इसलिए स्वरूप की अनुभूति हो, स्वरूप में भी चार प्रकार का जो स्वरूप बतलाया उसकी अनुभूति हो, पर स्वरूप
स्वरूप
भक्ति स्वरूप
स्वरूप विरोधी स्वरूप,
ये सबका ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान होकर के तब तक कृष्ण में उसकी रुचि या आसक्ति होगी या उनके नाम और भजन में उनको पाने के लिए साधन में रुचि होगी। हम लोगों को यही पर गड़बड़ी, चाहते हैं जो कृष्ण के नाम में कृष्ण की कथा में आसक्ति हो, किंतु होती नहीं आसक्ति। चेष्टा करते हैं नहीं किंतु होती नहीं, क्यों नहीं होती? इसलिए कभी स्वरूप की अनुभूति नहीं। जिस दिन अनुभूति हो जाएगी, नारद जी ने कहा दिया तुम्हारा सब अनर्थ दूर हो जाए और कृष्ण में आसक्ति हो जाए, बस साथ ही एक मिनट नहीं हो रहा है। इसलिए कहते हैं नाम साधक के स्वरूप कृष्ण नित्य दास प्रार्थना यथा शिक्षास्त्र, इसमें कैसे भजन करो आसक्ति के सहित। यदि निश्चिता भक्ति हो गई और वह रुचि में परिणत हो गई, रुचि का परिणत होगी देहात्म बुद्धि जाएगी तो, और देहात्म बुद्धि जाने के साथ साथ में स्वरूप का प्रकाश होगा। इसलिए कहते हैं नाम का जो साधन करने वाले हैं वो लोग कृष्ण का स्वरूप और अपना स्वरूप जान करके और उनका नित्य दास प्रार्थना करेंगे, करते 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 उनके हृदय में बद्धमूल हो जाए। यथा शिक्षा कर आई नंद तनुज किं करम पतितं मा विषमे भवान बुधो कृपया तौ पाद पंकज स्थित धुरी दर सब दिशम। बचपन में हम मान लिया कि ये रामचंद्र जी की या कृष्ण की पूजा करते, पिताजी ने कहा, पिताजी भी करते थे, हम भी कर रहे हैं, बचपन में छोड़े। और कोई अनजान में अजंबी व्यक्ति उसके गांव में कोई आया साधु जग और उसके कान में एक मंत्र दे दिया, छोटी सी लड़की है या लड़का, अब वो दे मंत्र दे करके वो चला गया, फिर कभी भेंट नहीं मिली। किंतु वही मंत्र एक दिन में जो दिया साधारण, बस उसको ऐसी निशा उसको बदल सकते हैं तहजीब में, तो बदल देगा वो सजीव मंत्र। ये एक ऐसी माने एक चीज है तो कुछ नहीं किंतु ऐसा वो हो जाता है दृढ़ छोड़ता है। उसी तरह से शादी क्या चीज है, दो लोगों को एक कह दिया गया ये तुम्हारे पति हैं, ये और क्या चीज है, कुछ है उसमें? मानो तो सभी है, नहीं तो कुछ भी मत मानो। रजिस्ट्री करके शादियां होती हैं वो टिकती नहीं है, दो दिन में खत्म हो जाती है। और पहले के लोग संकल्प से कर देते थे ये तुम्हारे पति, विवाह नहीं हुआ तो भी एकदम जन्म तक हो सकता था ऐसा विश्वास। तो ये साधक के हृदय में ऐसा ऐसा ही कोई सदगुरु हो और उसके अंदर में ये बीज डाल दे सकता है, और सचमुच में वो ऐसा ही साधक हो तो उसकी भावना अंत तक नहीं बदलेगी। इसलिए कह रहे हैं यदि साधक ये समझे कि मैं उनका नित्य दास हूं, गुरु का यही कार्य है किसी जीव के हृदय में वो इस चीज को बैठा देंगे ये तुम कृष्ण का दास, कृष्ण ही तुम्हारे उपास्य हैं और वही तुम्हारे नित्य आराध्य हैं, ये किसी के हृदय में बैठा दिया तो अब ये काम करेगा बहुत दूर तक, अंत तक काम करेगा, उसको बदल देना बड़ा भारी असंभव होता है। तो नंद तनु जिन कर पतितन मां विचमी भवन कृपया तो पाद पंकज स्थित धुरी सदृशन विचिंत यह श्लोक के चंद महाप्रभु जी का के मुख से निकला। कब का श्लोक है ये, कब का, उनके प्रारंभिक जीवन का है ना अंतिम जीवन का, चैतन्य से चामुख्य में ये कहां लिखा गया, अंत के अंत में ना? अंत के अंत में ये है, अर्थात ये एक गंभीरा गिरा का समय का ये है ना? पहले जीवन में उन्होंने ये प्रकाश किया, गुरु जी ने उनको मंत्र दिया ईश्वरपुरी जी, और उन्होंने कहा कि गोसाई की मंत्र दिला किंबा तार्थ, हमारे गुरु जी ने ऐसा मंत्र दिया उसका फल क्या। प्रकाशानंद सरस्वती जी ने पूछा कि तुम नाचता गाता और रोता क्यों है, भाव दिखलाता है, वाराणसी में ये भाव नहीं बिकेगा, ये बंगाल नहीं बिकेगा, ये तव जगतिक है, भक्ति माने वेदांत का ये विरोधी चीज है। उन्होंने कहा क्या कहूं मैं मूर्ख रहा, वेदांत समझ में नहीं आया, गुरु जी ने कहा वेदांत तुम न मत करो अधिकार नहीं, तुमको एक मंत्र बतला देता हूं यही मंत्र, तो उन्होंने मंत्र बताया और उसकी दृढ़ता के लिए बतला दिया हरे नाम हरे नाम हरे नाम, उस मंत्र को मैं गोपाल मंत्र दिया और करते करते मैं पागल हो गया, कभी रोता कभी चिल्लाता कभी नाचता कभी हंसता कभी जमीन में जोड़ता ऐसा, क्यों ऐसा हुआ, इसी समय में साधक को स्वरूप की अनुभूति होगी तब, नहीं तो कभी कृष्ण का दर्शन नहीं मिलेगा, किंतु वैसी निष्ठा के साथ में भजन हो तब तो महाप्रभु कैसे नाम कर रहे हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने ब्रजनाथ जी के जीवन चरित्र में देख लाया और दीक्षा लिया ना पागल हो गए लौटने लगे और देखा चैतन्य महाप्रभु को एकदम साक्षात नृत्य कर, हम लोगों को कितनी बार हुआ है ऐसा, हुआ है ऐसा, इसलिए दीक्षा का ये कारण दिव्य ज्ञान हो गया, किंतु अनुष्ठान की दीक्षा में ये असंभव, वैसा शिष्य और गुरु रहे तो हो जाए, यथा तक वो क्या समीक्षा
विद्वद्रोही
की दीक्षा, किंतु होती है लॉन्ग प्रोसेस, बहुत दिनों होगा जरूर निराश होने की जरूरत है, लेकिन हमको उसका परिश्रम करना पड़ेगा,
उस दिन से शुरू होगा,
गुरु जी कहा जाए ऐसा ऐसा करो कम से कम 1,00,000 हरिनाम करो, गुरु वैष्णव की सेवा करो, भागवत का आस्वादन करो, चैतन्य चैतन्य करो, दिन रात इसी में लगो, अब बताओ हम लोग कितना करते हैं, यदि करेंगे तो होगा नहीं तो नहीं होता। महाप्रभु जी
अंत में काटे वो समय तो दीक्षा हरिणाम होगा, वहां से लौट है, लौट करके उनका जीवन ही बदल गया। फिर तो संन्यास लेकर के फिर वहां पर पहुंच गए जगन्नाथ, और अंत में वो देखने के नंद तनुज किम काम, मैं कौन हूं? नंद तनुज, अब नंद तनुज मैंने नंदनंदन, उनका किंकर हूं, तो किंकर हूं मैंने क्या किंकर हूं? श्रीमती राधिका और बलदेव प्रभु जी से लेकर जितने जीव तत्व भी हैं वो सब उन्हीं के किंकर हैं। बलदेव प्रभु जी भी अपने में, नित्यानंद प्रभु जी भी अपने में किंकर का अभिमान करते हैं, तो वहां ऊपर से लेकर के श्रीमती राधिका जी भी अपने को किंकर अभिमान करते, इसलिए यहां पर ये तो नहीं बतलाया ये किंकर हूं तो कौन किंकर हूं। अच्छा आप लोग अब विचार करके देखिए, महाप्रभु जी ने, महाप्रभु जी कह रहे हैं तो अपने को जो भी यहां पर किंकर कहा तो इस किंकर में क्या चीज है? अच्छा वो शांत रस के सेवक हो सकते हैं कि महाप्रभु शांत रस के होंगे क्योंकि संसार से तो विरक्त हैं, शांत रस हो सकते हैं किंतु कोई मानेगा शांत रस भी उनमें है किंतु वही तक नहीं, शांत और वो हास्य अद्भुत करुण रौद भयानक भी बहुत सर, ये सब चीजें विभस का वक्त प्रकाशित नहीं क्योंकि ब्रज में ये सब चीजें नहीं। दास्य दास्य के लिए कह रहे हैं पतितम नंद तुम्य किंकर, किंकर माने दास। अब ये दास कौन श्रेणी का? सभी लोग दास हैं, दास से हो सकते हैं हनुमान जैसे ही प्रभु जी हैं, ये कोई दास भगवान का इतना ऊंचा उठ करके और इतना रोएगा, इतना भाव में आएगा और गोपियों की केवल बात करेगा, इसलिए ये दास तो नहीं। सख कहो सखा भी क्यों नहीं, इनके आचरण के द्वारा मालूम पड़ता है, इतना अधिक प्रेम है कि वो सख में भी नहीं ही। इसे और बढ़कर के बात कर लो नहीं, यहां पर भी नहीं, वो तो कृष्ण ही है, राधा जी का भाव लेकर के आए, इसलिए अब कम से कम तो राधा जी का भाव ही इनका भाव है, यहां तक तो निश्चित उनका भाव क्या है, राधा जी का ही भाव है, इसलिए श्रीमती जी, ये श्रीमती जी में कौन सा भाव, कौन सा भाव होगा, उनके भी बहुत सी बहुत से भाव, वही एक भाव में ललिता जी है, एक भाव में विशाखा जी है, चित्रा जी है, वही एक भाव में चंद्रावली जी है, वही पद्मा जी है, सब वही है, एक एक भाव में, तो इनमें से कौन सा भाव, महाभाव में भी अत्यंत उन्नत जो भाव मादन मोदन चित्र जल इत्यादि वाली श्रीमती राधिका, जिनके भावों को आस्वादन करने के लिए महाप्रभु जी कृष्ण ही स्वयं महाप्रभु जी के रूप में अवतरित, इसलिए महाप्रभु जी सब समय यही सोचते हैं मैं श्रीमती राज दुलारी श्रीमती जी इसके नीचे मुका। हम लोगों में ये जहां तक जिसका अधिकार है, अभी तो हम लोगों का अधिकार का कुछ अभी निर्णय का कोई जरूरत नहीं है, अभी दास साधारण में भाव आना चाहिए, दास भाव होने पर भी वो भी स्थाई है कि अस्थाई है इस पर भी विचार है, स्थाई होना चाहिए। और यहां पर कहें साधारण रूप में एक इसको करें, किंतु मुक्त प्रग्रह वृत्ति से इसका विचार वहां तक जाएगा राधा भाव अनंदतम जकिन करण। जीव मात्र ही भगवान का दास, यहां तक कि दास में भी उसका गोपी भाव तक का भाव किसी प्रत्येक जीव में हो सकता है अपने अधिकार के अनुसार, तो वहां का दास। अब इसको प्रकट करने के लिए हमको श्रद्धा से आरंभ करके साधु संघ अनर्थन वृत्ति रुचि ये आसक्ति तक या इसके बाद तक आने की जरूरत। तो अब स्वरूप की स्वरूप हमारा जो है इस पर झांकी उसकी आएगी, उस समय हम देख सकेंगे ये कृष्ण से हमारा क्या संबंध है, तब उसके प्रति आसक्ति आएगी, नहीं तो वैसा स्वरूप की अनुभूति नहीं होने से कभी भी। पतितं मां विषमे भवान बुधौ, कृष्ण से प्रार्थना कर विषम भवान बुधि, संसार सागर में मैं पड़ा हुआ, जन और मरण अनंत समुद्र अथा अनंत समुद्र है, कोई भी आकार नहीं, कब से हम लोग इसमें हैं और कब तक इसमें हम लोग पड़े रहेंगे, मर भी नहीं गे मरेंगे भी नहीं, और डूबने में और समुद्र में पड़ने पर और जानवर उसमें खा रहे हैं और मन मर नहीं रहे, कष्ट सभी है, मैं आग में जल रहा हूं और जलने का कष्ट है किंतु मर मिलेगा, एक स्थिति है। एक आदमी को गोली से उड़ा दो मर गया, आग में जल गया साथी साथी मर गया, जो हुआ हो गया, और एक आदमी आग में तड़फड़ कर रहा है मर नहीं रहा है प्राण नहीं निकल रहा है और सभी कष्ट हो रहा है, ये कितना भयानक है। हम लोगों की स्थिति यह है किंतु अभी अनुभूति नहीं है। इन लोगों को जिनको अनुभूति है वो हमको समझा रहे हैं कि तुम इतने दुख में तुम समझ नहीं पा, क्यों इसलिए तुम जल करके ऐसा हो गया है ना जो तुम्हारी स्मृति भी खत्म हो गई है, बेहोश हो गया है। बेहोश हो जाने पर किसी को कोई काटेगा या जलाएगा तो मालूम होगा, अस्पताल में चीर फाड़ करते जिसमें उस समय में हमको कोई आग लगा दे सेंसलेस पड़ेगा उसमें मालूम होगा, ऐसे हमारी एक दुर्दशा है। मैं विषम संसार में पड़ा हुआ दुखार कृपया तो पाद पंकज स्थिति सद विषम बीजी, आप कृपा करके अपने चरण पंकज में स्थित एक धूली के समान समझिए, हमको मान लीजिए, मैं आपके चरणों, भगवान का चरण क्या है, भगवान से तो संबंध नहीं, भगवान के चरण कमल साधु और गुरु है विष्णुपाद अथवा ऐसे ही भक्त भी हम हरे तो पाद ही कमूल, पाद के मूल कौन है, वैष्णव लोग हैं, गुरु हैं, वैष्णव हैं, उसमें स्थित मैं धूली के समान हूं, ऐसे ही आप कृपा करके मुझको समझिए और इसी रूप में हमको स्थान दिए, तब मैं धीरे धीरे समझूंगा कि हमारा अधिकार क्या है, मैं कौन हूं, कैसे हूं, उनसे के साथ में हमारा क्या संबंध है, इसके पहले नहीं। कोई दुर्गा का भजन करता है और प्रारंभ से ही उसको दुर्गा का मंत्र मिला है, अच्छे उसके स्वरूप में दुर्गा का दासत्व है कि नहीं, जब शास्त्रों को विचार करते हैं तो भगवान के सभी दास हैं, अब उसकी सिद्धि वहां तक होगी नित्य स्वरूप में, वो नहीं, एक न एक दिन किसी जन्म में साधुओं का संग मिलने पर वो छुपेगा ही और छोड़ करके भगवान का परिचय करना पड़ेगा। जैसे रामायण को ले, काव्यशून्य जी पहले शुद्ध जाति में थे, वो शंकर जी की आराधना शिवोहम शिवोहम या उनकी पूजा इत्यादि करते, जिनके स्वरूप में भगवान का ही दासत्व है, इसलिए उनकी खूब पूजा निष्ठा के साथ में कर रहा था और किसी ने कह दिया उनके गुरु जी ने अरे शंकर जी भी उनके दास हैं जिनके उनका भजन कम नहीं करता है, बस उनको रोका गया। उन्होंने लगा लिया क्या गुरु जी को अपना शंकर द्रोही मम
दास
दास कहा, यह स्वप्न में भी नहीं संभव है। क्या है वो चौपाई शंकर
द्रोही मम दास कहा,
ये भगवान राम कह रहे हैं। जो हमारे शंकर जी का द्रोह करेगा वो मेरा कभी भी दास नहीं होगा, बात तो ठीक है ये। अब उन्होंने अपने गुरु जी को समझ लिया जो ये हमारा गुरु
शंकर
का द्रोही है, बात ठीक थी कि गलत थी? द्रोह किसको कहते हैं? यदि उनका विरोध करे तब तो उनके गुरु जी ने तो उनका विरोध तो नहीं, उन्होंने कहा कि अरे राम के भी आराध्य वो हैं
शंकर
की, राम शंकर के भी आराध्य हैं राम, और राम का अर्थ करो इनको गुरु मान लो। अब वो बिगड़ गया, जगत के प्रभु नियंता सृष्टि करने वाले शंकर जी, हमने आज तक कभी सुना ही नहीं जैसे शंकर जी के भी आराध्य है राम ऐसा होता है, मैं नहीं मानता, और गुरु जी को अंत संत कर करके अपमानित करने मारने दौड़ा। लंबा चौड़ा शुद्ध तो था ही, बस गुरु जी को प्रहार ही देने में केवल बाकी था। इतने में शंकर जी ने देखा जैसे ये तो हमारे भक्त को ये पीठ देगा ये बदमा, बस झट प्रकट नहीं हुए, आकाशवाणी जगह जाओ छोटी जन्म नरक में जाएगा इस पाप के लीजिए, ऐसे शुद्ध गुरु का इसने अपमान किया। उसके समझ में नहीं आया ये शंकर जी क्यों बिगड़ गए, मैं तो शंकर जी की आराधना कर रहा था तो ये शंकर जी क्यों बिगड़ गए, ये तो शंकर जी का द्रोही है। ऐसे ही साधारण लोग वैष्णवों को शंकर का द्रोही मान लेते हैं और नरक में जाते हैं कोटि कोटि जन्मों तक, उनके समझ में नहीं आता ये कैसे कह रहे हैं। अच्छा इसने शंकर जी का क्या द्रोह किया, उसके गुरु जी ने कोई द्रोह किया? उन्होंने जो बात असली थी वो उसको बात को कहा जे ये शंकर जी के भी आराध्य परम आराध्य है, तुम उनका भजन करो जैसे कि शंकर जी प्रसन्न होंगे। शंकर जी का प्रसन्न करने का तरीका क्या है? हमारे जो आराध्य हैं उनकी यदि कोई पूजा कर देना और उनका प्रसाद दे उनका माला दे तो हम क्या करेंगे? हट लेकर के प्रसन्न हो जाएंगे। कहां से ले आए? गिरिराज गोवर्धन का। गिरिराज जी का बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लेकर के अपने खाया, सब लोगों को दिया, अपने गले में माला भी लगाए। कहां से ले आया ये प्रसाद, कहां का है? ये दुर्गा जी का प्रसाद। कहां से ले आया? वो भवानी शंकरी है उधर में जन्म स्थान के पास कंखल से, वहां से ले। ठीक ठीक दे रहा है वहां का सिंदूर और ये सब चीज प्रसाद दे रहा है, उनको प्रणाम कर। अरे ये लेता नहीं, ये तो शंकर जी का और भवानी जी का जरूर ये महाशत्रु है, ये तेवती है, बस ऐसा मान लेगा। उन्होंने प्रणाम किया बस, अब वो झगड़ा करने लगेगा और ये इसको सम्मान दे रहे हैं उनको समझ नहीं पाएगा, ले नहीं रहे हैं, उसकी आराधना में त्रुटि है। इसलिए जीव मात्र का स्वरूप है भगवान का दास, कृष्ण ही राम निसिंह नकल की बामन नारायण सब कुछ है, इसलिए सबको ही कृष्ण के रूप में कहा गया। जीव का स्वरूप और किसी भी देवता देवी का दास नहीं, वो कृष्ण ही का किसी के रूप में भी। हनुमान जी भी कृष्ण दास हैं, कैसे? इसलिए ये हनुमान जी ही शंकर जी बन गए हनुमान, और फिर हनुमान बन गए द्वापर में, और वही शंकर जी बन गए गोपीश्वर वृंदावन में जब कृष्ण है। इसलिए जीव मात्र का स्वरूप गणेश जी का और देवताओं का, ये बल्कि गणेश जी का भी, पार्वती जी का भी, शंकर जी का भी, हनुमान जी का भी, भीम का भी, सबका स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास। इस चीज को समझना चाहिए, इसलिए वो शत्रुता नहीं बल्कि यथार्थ स्थिति को बतला करके उनका उपकार, इस चीज को समझना चाहिए। इसलिए कोटि कोटि जन्म लग जाए भले ही, किंतु उनका स्वरूप बदल करके फिर इसमें आएगा, और कृष्ण का दासत्व हो डायरेक्ट वो बदलने वाला, ये सब बदलने वाले चेंजेबुल हैं। इसलिए पाप पंकज की भूली यदि ये समझ में आए और अनुभूति किया, भजन करते करते हम देखेंगे कि हम कृष्ण के दास पवनित दास नहीं, तुम्हारा दास हो गया, मैं तुम्हारा नित्य दास तुम्हें छोड़ करके संसार में घूमता हुआ ना, संसार रूपी महाभवारण महाभवर्ण मन समुद्र पड़ा, उसमें गर्म धाराएं चलती हैं और उससे समुद्र में बड़वानल आग लगती है, उसमें पानी में ही आग लग जाती है और वो और आग तो पानी से भिज जाएगी और वो पानी को ही घी बनाकर और उसमें मान ले कि उस धारा में कोई पड़ जाए तो मछली फचली जितने जानवर जीव सब खत्म हो जाए, बड़े बड़े वहां पर ये घड़ियाल उसको भी मगरमच्छ हिमिंगिल इत्यादि मछलियां हैं, नौकाओं को भी बड़ी बड़ी जहाजों को उठा करके फेंक देती हैं और चीर देती हैं, और बड़े बड़े ये सब घड़ियाल घड़ियाल सबको खा जाते हैं, ऐसे ही निकल जाए, बड़े बड़े सर्प और न जाने क्या क्या समुद्र में है, उसमें हम लोग मर रहे। संसार दुख जबदौ पतितस्य कामो क्रोधादि नक्रम करई कबलस्य दुर्वासना निर्मितस्य निराशयस्य चैतन्य चंद्रमा देवी। ये भयानक समुद्र है संसार, और उसमें काम क्रोध वो सब क्या करेंगे, काम क्रोध ये सब ऐसे मगरमच्छ हैं, लोग मर भूम मार कि अब एक जन्म होता है फिर दूसरे जन्म के लिए हजार जन्मों के लिए मनुष्य जन्म में ही प्रस्तुति करा देते हैं, खाता इसी समय में खुल जाता है, बैंक में जमा हो जाता है, कोटि कोटि जन्म होंगे उसका सब उसी में खाता खुल जाता है, अब इतना जन्म मनुष्य जन्म, और फिर मर करके कोटि कोटि जन्मों में जाता है, और ये जन्म यदि सुधर जाइए कोई कामना वासना ना करके भगवान का भजन करे बस उसका जीवन सुधर जाए, किंतु बहुत विघ्न बाधा है, सहज नहीं है, इसीलिए कहते हैं पवनित दास हुई तुम्हारा पासरिया, आपको भूलने की वजह से, भगवत भूलने की वजह से इस भावर्ण में गंभीर समुद्र में पड़ा हुआ, कृपा करी परम मोरे पदभूलि, आप अभी पदभूलि नहीं हुए हैं, कहते हैं कि कृपा करके आप हमको पदभूलि बनाइए, समझिए आप समझने से ही हो जाएगा, पदभूलि होने से पद को हम लोग नहीं छोड़ पाते, किंतु भगवान कभी दूर हैं, अभी कैसे होगा, भगवान के जो भक्त हैं उनसे संबंध करके उनकी पद की भूलि तो बनाओ पहले, तब फिर पीछे भगवान का हो, यहीं पर नहीं होता है, दम्भ अभिमान सब हम लोगों को जकड़े में होने नहीं देते, तुम्हार सेवक करो तुम्हारा सेवक होकर के निरपराध नाम संकीर्तन करने से करते 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 कृष्ण कृपा से भाव उद्गम हो, यदि कोई निरपराध होकर के कृष्ण नाम कीर्तन करे और भगवान की कथाओं को सुने तो जरूर शुद्ध नाम उसके हृदय में उदित होगा, उसका स्वरूप ही उदित होगा, सब उसका कल्याण, शुद्ध नाम होना चाहिए। अभी हम नाम कर रहे हैं, नाम करते करते विक्षेप लय कितने प्रकार के सब आते, नाम एक नाम किया और दूसरी चिंताएं आ गई, उधर की चिंता इधर की चिंता उधर की चिंता, लाखों प्रकार की चिंताएं, इन चिंताओं को छोड़ करके जरा करो तो देखिए ऐसा नाम यदि होगा तो कोई नहीं आसक्ति प्रेम भाव सब होगा, किंतु होता नहीं,
क्यों नहीं होता? इसमें गलती भगवान की है कि हमारी गलती है? हमारी अपनी गलती है, किंतु वह सुधरेगी नहीं अपने चेष्टा से। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे और वो कृपा करके शक्ति संचित करेंगे, तब ऐसा हम नाम कर सकते हैं। ऐसा नहीं, भागवत का प्रसंग मिल गया है प्रथम स्कंद में, परीक्षित जी बैठे हुए हरि कथा सुन रहे, ये सुनार है। कहते कि देखो, यदि सुनना है भगवान की कथा जैसे तुमने प्रश्न किया है तो हम कहते हैं वैसा सुन। साधक अपनी क्षण साधन मत बैठे और सुन, जैसे गुरु उपदेश देते हैं ना उस प्रकार से सुन, और उसके बात में एकदम विश्वास रख। ऐसा कर, कुछ लोग सुनने के लिए आते हैं और सुन करके चले जाते हैं, वो सुने क्या, कान में वो आज टकराई और बस। हम लोगों में भी, पुरुष में भी ऐसे हैं, कुछ समझ आने बैठे हुए हैं, बस बैठे हुए, समझने की चेष्टा करनी चाहिए, यह तब तक फल होगा। इसलिए कहते हैं परीक्षित महाराज जी को, देखो तुम सुन रहे हो किंतु कैसे सुनो, ये देखो हम तुमको कायदा बतला रहे हैं। वैसे हम लोगों के लिए ये कायदा नियम को पालन करो, स्त्री पुरुष का भेद नहीं है इसमें, वो नहीं समझ सकेंगे, पुरुष समझ लेंगे या पुरुष नहीं समझेंगे स्त्रियां, ऐसा कोई नहीं। प्रत्येक जीव मात्र, किंतु एक बात है, विद्या के बल से इन चीजों को नहीं समझ, बल्कि वो बाधा है, वो विद्या का अभिमान भी, चार प्रकार का अभिमान कहा उसको भी छोड़ो, उच्च कुल में जन्म लेने का, विद्या का, रूप का, ये सब छोड़ो तब होगा। एक आदमी एक निरक्षर है, कुछ नहीं जानता, वो भक्ति में बहुत आगे बढ़ सकता है और जाता ही है अधिकार, और महाविद्वान होने पर भी। खूब समझने वाले हैं संस्कृत और हिंदी और ये बड़े बड़े अवसर तक वो हुए, किंतु एक निरक्षर बालक जो अपने गुरु की सेवा करता है उसमें जो एकांतिकता आती है, देखो तो जगत में ढूंढ करके जो एकांतिकता, ये छोटी सी चीज जो प्रारंभ की चीज है, बड़े बड़े विद्वानों में लाखों में से कोई एक को होगा। आप लोगों को सहज में है, लड़कियों को भी सुनते सुनते ये कृष्ण की छोड़कर के अब अपना हृदय कहीं नहीं, चाहे लाख कुछ हो जाए, ये एक एकांतिकता है। बड़े बड़े विद्वान हैं, या अभी यहां पर भी बड़े बड़े विद्वान हैं, एकात्मिकता नहीं। शंकर जी, दुर्गा जी, गणेश जी, हनुमान जी, कृष्ण जी, राधा जी, सब एक साथ में एक आसन पर बड़े पड़े हैं, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, सब कोई एक रुष्ट ना हो जाए। मानो ये सब अलग अलग देवता, अलग अलग ठाकुर और सभी स्वयं को, सभी माने क्या, अलग अलग सभी हैं अपने सब। बतलाओ ना उसकी उपासना, साधारण भी उसका कुछ भी नहीं हुआ, कोई आदमी आएगा, महाराज जी मेरी कैसी उपासना, बहुत अच्छी हो रही है, और कोई हम लोग में से आकर रहा तुम्हारा कुछ भी हुआ तो उसका मन खराब हो जाएगा, तुम्हारा प्रारंभ ही नहीं हुआ अभी, कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि तुम बेकार की बातों को सीख करके और भी इतना बढ़ा दिया कि तुम असली बात को तुम जीवन में, इस जीवन में अंततः नहीं सीखो। हारमोनियम बजाने वाले की यहां कोई गया, भाई हमको सीखना है, मैं कुछ कुछ सीखा भी हूं, थोड़ा सा बहुत सीख लिया हूं, किंतु आपके पास आया जी, आपके पास में पूरा सीख लू, मैं बहुत कुछ थोड़ा बहुत जानता हूं किंतु आपसे और सीख लू। अजो सीख करके आए हो, आता है हमारा फिर 300 रुपया महीना लगेगा। उसी समय में एक दूसरा बालक है, गुरु जी मैं आपसे हारमोनियम सीखना चाहता हूं, कुछ सिखा रखा है तो नहीं, एकदम नहीं आता है, मैं जाओ 100 रुपया महीना, मैंने सिर्फ 300 रुपया ले रहे हैं, हम इसको 100 रुपये में शिक्षा दे रहे हैं, अरे तुमने जो सीखा है ना इसको भुलवाने में हमारा बहुत परिश्रम लगे, तुम्हारा सब बेकार का सीख लिया, तुम्हारा वो चौपट कर दिया है, स्वभाव ही तुम्हारा बिगड़ गया। उस बिगड़े स्वभाव को हमको सुधारने में ये 200 रुपया आपसे तो 500 रुपया लेता भी तो भी आपको बहुत मुझको चेष्टा करना पड़ेगा। और इसको कुछ नहीं, उसको जैसा लिखाएंगे वैसा ही लिख देगा। इसलिए एकांतिकता होना ये साधारण बात नहीं है परमार्थ जगत में। कृष्ण ही हमारे मूल आराध्य हैं, मैं उनका दास हूं। जिसके अंदर में आ गया वो पथ पर आ गया, और नहीं तो बाकी सब इधर उधर घूम रहे हैं, अभी कोई रास्ता ही नहीं उनको मिला। इसलिए कहते हैं कृपा करी कर्म और पदभूलि। एकांतिक जो भक्त हैं उन्हीं के चरणों की पहले पदभूलि तो हम ऊपर से दिखता है कि यह सबका आदर करता है। जैसे आजकल के ये है ना जन नेता जिसको कहते हैं, जन नेता गण नेता गणनायक सब बने हुए हैं। यदि कुछ निष्ठा भी है, थोड़ी सी रुचि भजन की श्रद्धा है, किंतु एक में कोई निष्ठा नहीं और न उनकी श्रद्धा है, बस गद्दी की अपनी, बस जितना राजनीतिक झगड़ा और सब ये सब चल रहा है। बहुत कम ऐसे हैं जिनकी एकांतिक निष्ठा है, उसमें रह हुई उस समाज में हो ही नहीं सकता। इसलिए संतों के साथ में ऐसा होगा जो एकांतिक हो तब तो एकांतिक बुद्धि है। ये पहला प्रारंभ होगा एकांतिक का, तब फिर आगे हम पढ़िए तस्वीर मतानुसार कथा। कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, तो ये पापलाधा परीक्षित महाराज जी को ये कह रहे हैं जे कैसे सुनना चाहिए ये पहले सुनो। और सुनने से क्या होता है ये भी सुनो। देखो जगत के आराध्य कृष्ण ए पे चांस कला तुमसा कृष्ण तू भगवान, ये पहले ही बनता है। और उनकी एकांति का आराधना ही सवाई पुंसान परो धर्मो जतो भक्ति रथो खजे अहित तुक्य अप्रतिहता जयात्मा, उसी का भजन करने से ही आत्मा के कोई अंश है, कोई कला है, कोई कला के भी कला है, कोई कला में भी नहीं आती। तो इन सब चीजों को अच्छी तरह से समझ करके तब तुम सुनो समझो ये सब चीज को। वो कौन है? कृष्ण है। उन्हीं से जगत का सृष्टि प्रलय और पालन पोषण चाहिए, वही हमारे सर्वस्व है। ये समझो पहले चीज। व्यास जी को सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं परीक्षित महाराज, पहले ये समझो ये कृष्ण इतने बड़े दयालु हैं कि श्रीमतान स्वकथा कृष्ण पुण्य समान कीर्तन। कृष्ण की जो कथाएं हैं उस कथाओं को जो सुनता है तो सुनने और कहने वालों के हृदय में कृष्ण प्रवेश कर जाते हैं और उसके सारी गंदगियों को कौन करता है? तू कृष्ण किसको श्रद्धापूर्वक जो उनकी कथाओं को सुनता है। स्वकथा मैंने कृष्ण की कथाओं को सुनने वालों को कृष्ण ही उनके हृदय में पहुंचकर फिर ज्ञान तक हो चैत्य गुरु के रूप में, परमात्मा के रूप में, चैत्य गुरु के रूप में विशेषकर द्विज श्याम सुंदर मुरलीधर इस रूप में। यदि कोई किसी का राम का भक्त है तो राम के रूप में, बलदेव प्रभु का यदि है तो बलदेव के रूप में। इस तरह से यहां पर विशेष करके कृष्ण के लिए कहा है। तो वो कृष्ण है ना हृदय में चैत्य गुरु के रूप में प्रवेश करके, और वहां पर तो है ही है परमात्मा के रूप में पालन पोषण करने वाले खिरोदशाई पुरुष के रूप में, परमात्मा के रूप में। तो वहां पर परमात्मा साधारणों के रूप में सब, किंतु कृष्ण जी के आराध्य पहले से ही बना दिया है तो उनके हो जाएंगे वो वही होंगे। तो हृदय अंतस्थ हो, हृदय में प्रवेश करके स्थ माने स्थिर होकर के ही अभद्राणी, जितने प्रकार के अभद्र हैं, नमापराध, सेवा अपराध और नमापराध, नमापराध सबको याद तक कि जो अविद्या हमारे हृदय में है ये भी अभद्र है, अनर्थ सब है ये भी अभद्र है, यहां तक कि आलस्य प्रमाद ये सब जितनी चीजें हैं सब अभद्रता है। अभद्रता है कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम, इसके अतिरिक्त हमारे अंदर में जो जो भावनाएं वासनाएं हैं, प्रारब्ध कर्म अप्रारब्ध कर्म कूट बीज अविद्या ये सब को दूर कर देते हैं, विमुक्तता को भी दूर कर देते हैं, विभुनोती सुहृत कदम बीज भुनोती, भूनना मैंने रूई को ढूंढते हैं ना, कैसे ढूंढते हैं उसको मारता है और वो लग करके चमड़े का वो डोरी होती है, उसका जितना मैल है ना सबको वो एकदम झाड़ देता है, उसको अलग अलग रेशे को अलग अलग तक कर देता है, कहीं भी कोई मैल ना, चोट भी लगती है उसको, वैसे ही हमको भी यदि वो ढूंढता है ना रुई की तरह में धुनेगा तो हमको भी कष्ट होगा, तो उस कष्ट को भी तुम लोग कष्ट मत, वो धुन रहा है। अथवा एक और धुनोती, धुनना मैंने होता है स्थिर धुन धन कर पचता है, काल कर्म और उसको दोष दे करके और वो पछताता है और सिर धुनता है, क्या उस चौपाई याद है ना कोई है, क्या हाँ उसको दोष लगा क्या है, काल के वजह से हमारा ये सर्वनाश, फिर दोष देता है वो उनके वजह से ये हमारा हमारा कर्म है, इसलिए उसको अपना तटस्थ रहता है सबको दोष को और सी धुन धुन करके ऐसे पचता, ऐसे ही जी यदि ये समझे कि मैं अनर्थ में पड़ा हुआ हूं और ये सब हमारे अनर्थ हैं अपराध इत्यादि अशुभन करके कृष्ण कृष्ण हाय कृष्ण हाय कृष्ण ऐसा न सिर्फ उदन करके पछताए रोए, तो ये प्रभु हमारे हृदय में प्रवेश करके इन सबको दुख कर सिर्फ ढूंढने की स्प्रिया, अपनी गलती तो समझो, गलती तो समझते नहीं, कहां पर हमारी गलती है निकालने की चेष्टा नहीं करते, और थोड़ा सा प्रभु निकालने की और गुरु चेष्टा करना है तो हम उसके शत्रु बन जाते हैं, प्रभु को भी, हमारा लड़का मर गया बस ठाकुर जी की मूर्ति टूटी और माला गले की तोड़ फोड़ करके और ये गुरु जी ने जो माला दी थी सब लेकर के जमुना में दिया के बाप फेंका, घर में आपको ही साधु संत ब्रह्मचारी नहीं जाएगा, आना भी छोड़ दिया एकदम सब छोड़, तो क्या भगवान उसके हृदय में है, इसलिए चैत्य गुरु के रूप में प्रभु उसके हृदय में प्रवेश कर दे, जो भगवान की कथाओं को श्रद्धा पूर्वक सुनेगा और उसको ग्रहण करने की चेष्टा करेगा उसको ऐसा कर दे, क्यों भगवान पुण्य श्रवण कीर्तन है, श्रवण और कीर्तन कार्यों के समस्त अनर्थों को दूर करके पुण्यमय बना देने वाले, पुण्यमय माने यहां पर सुकृति संपन्न और सुख बना, इसका मतलब है उनका स्वभाव ही ऐसा है इसलिए ऐसा करते हैं, और विधुनों के सुहित सदा सुहित सतान माने क्या ऐसा कर हृदय के अंतःकरण के जितने मैल है ना सबको दूर कर देने और सुहित सतान माने वैसे जो वैष्णव लोग हैं उनका सुहित बन अर्थात वो लोग उनके सुहित हो जाए भगवान कृपा, जब भगवान की कृपा होगी तो उन साधुओं को संतों को ही जो भजन करने वाले उन्हीं को ही अपना हम सुहित समझ सकते हैं अन्यथा हम सुहित नहीं, इसलिए उसमें भी बतलाया गया कि उनको प्राण का बंधु समझ करके जो निंदा इत्यादि से सुन्न होकर भगवान का अष्टकालीय भजन करते हैं संसार में नहीं रहते, वो हमारे प्राण के बंधु हैं। ये स्वीप दे करके भी अपना आराध्य समझ करके उनको तन मन वचन आत्मा सबसे उनकी सेवा सुनिश्चित करो, अपना बंधु समझ कर उनको छोड़ देना ना नहीं क्या, अपना सर्वनाश फिर जन बचे नष्ट प्राय अभद्वेश नित्यम भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्ति भगवत नष्ट परीक्षित सुखदेव गोस्वामी जी का परीक्षित। देखो भगवान की इस प्रकार से निरंतर हरि कथा का पहले श्रवण और इसके बाद में कीर्तन, जो सुना उसको दूसरे से कीर्तन करो उसका भी मंगल चाहो, आज यदि मंगल नहीं चाह अपने आप किया भगवान उतने प्रसन्न नहीं। इसका मतलब ये तुमने दूसरों का दुख नहीं समझा और तुम भी दुखी नहीं, इसका मतलब ये
कुछ सुनना ही ना चाहे
वहां क्या कोई सुनाए अंततः श्रद्धा उत्पन्न हो तब तब हाँ थोड़ा सा कोशिश कर सकता है। जैसे प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज जी को पिताजी बुलाते हैं बिना बुलाए नहीं जाते, बुलाते हैं ना उसके पिताजी, ये अरे सुनो बेटा तो वो चला गया, अरे भाई तुमने क्या समझा जो क्या पढ़ा लिखा, तो भगवान का भजन करना चाहिए, तो सब बिगड़ जाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद में दंड देकर तो फिर बुलाते हैं, नहीं बुलाने से दूर रहता है। तो वैसे ही जो नहीं सुनना चाहे उनसे दूर ही रहो, क्योंकि ऐसा भक्तों के लिए कहा गया है देशी के प्रति उपेक्षा। हाँ बुलाते हैं तो जाओ, पूछते हैं तो कह दो भगवान राम राम कीजिए कृष्ण कृष्ण कीजिए, बिगड़ जाते हैं तो तुम चुप रह जाओ। ये तो श्रद्धालु हैं सब, इसलिए कहा जा श्रद्धालुओं के। फिर जन तस्त नष्ट प्राय प्राय प्रायेशु अभद्रेशु नित्यम भागवत सेवा। देखो भागवत की सेवा जरूरी है, क्यों ऊपर वाले में सुहित सताम कहा ना, तो सुहित सताम कब नीचे ले आओ, भागवत सेवा, भागवत की नित्य सेवा कर रहे यदि श्रद्धापूर्वक। दो भागवत, एक ग्रंथ भागवत और दूसरा भक्त भागवत। पहले भगवत भक्तों के हाथ में ग्रंथ भागवत की चाबी कुंजी है, बिना भक्त भागवत के उस भागवत को हम खरीद करके सबको बांट भी देंगे तो किसी के जिम्मे कुछ भी नहीं है, नहीं समझेगा। और उनको भागवत न भी दिया जाए और भागवत की कथा सुनते हैं तो भागवत उनके पास में है, इसलिए भागवत भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत दोनों के शरण में जाओ। बिना ग्रंथ भागवत के हमारा कोई भी कल्याण नहीं, किंतु ग्रंथ भागवत के बिना वही हमारा आराध्य है। किंतु भागवत को समझने के लिए श्रमण करने के लिए भगवत भक्त की जरूरत है, भक्त जा भागवत पढ़ो अपने मत पढ़ो, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा उल्टा सीधा तुमको कोई भर देगा, इसलिए मत सुनो। कोई भागवत का व्याख्या कर सबई पुंसांग करो धर्मो जो भक्ति अधोक्षक जो भगवान है उनके चरणों में अहेतु की भक्ति करने से यही परम धर्म। ऐसे ये जो कहा गया, कोई कह रहा है भागवत के बड़े मर्मिक विद्वान वो कह रहे हैं तथाकथित संस्कृत कुछ पढ़े लिखे हैं तो इसका अर्थ करेंगे जो यहां पर ये कहा गया कि ये व्यवहारिक श्लोक है नीचे के क्लास के लोगों के लिए, ये असल में परब्रह्म जो निराकार निरंजन निर्गुण निराकार अव्यक्त अनादि है वही शुद्ध ब्रह्म है, और ये हम लोगों के कल्याण के लिए निचले स्तर पर व्यवहारिक रूप में इनके भजन की बात भक्ति की कर व्यवहारिक नहीं, भक्ति भगवान और भक्त होता है। और जब ऊपर उठ जाता है, माया दूर हो जाती है, तो भक्त भगवान और भक्ति, ये तीनों चीज नहीं रहती है वहां पर, निराकार मैं ही ब्रह्म हो जाता, उसका कोई आता नहीं। इसलिए ये दूसरे स्थिति की बात कही गई है, नहीं तो हम सभी ब्रह्म। इनके साथ साथ में लाख जन्म तक सुनने पर अनर्थ पड़ता जाएगा, भगवान के चरणों में अपराध हो जाएगा। शुद्ध भागवत का ये तात्पर्य, इसलिए भागवत को यदि पढ़ना है तो अपने मत पढ़ो, क्योंकि अनुवाद दूसरों का पड़ेगा, हिंदी में अनुवाद प्राय अद्वैतवादियों का है, तो उसमें गड़बड़ी हो जाएगी। इसलिए उनको साधारण व्यवहारिक मनुष्य मान लेगा कृष्ण को, उनको भगवान नहीं मानेगा। हम जो बताया गया कि ओ भाग्यम हो भाग्यम नंद गोप्रिजाम जन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम, तुम नहीं मानेगा उनको अपने आप पढ़ने से। इसलिए भक्तों के पास में जाओ, वो समझा करके तुमको भागवत करो, तुम्हारे हृदय में ही वो भागवत को बैठा। ये विद्या से नहीं होगा, पांडित्य से नहीं होगा, और किसी चीज से नहीं होगा। इसलिए पहले भक्त भागवत की सेवा करो, श्रद्धा करो, और जैसे करें वैसे चलो, और पीछे भागवत की सेवा। भागवत की सेवा करते 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 दशम स्कंद में कृष्ण के और गोपियों के जो चरित्र हैं, वही आराध्य का भागवत का वही प्रतिपाद्य विषय है, वो प्रेम। कौन प्रेम? गोपी प्रेम। गोपी प्रेम में भी श्रीमती राधिका जी का प्रेम ही ये सब, उससे बढ़कर के और कोई चीज नहीं। तो नष्ट प्राय अभय दृश्य, अब यहां पर अभद्र कुछ कुछ नष्ट हो गए हैं, काम को लो मग मोह मात्सर्य, ये रजोगुण और तमोगुण का ये प्रभाव है, फल है। जहां रजोगुण रहेगा और तमोगुण रहेगा, वहां पर काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य, ये अभी थोड़े थोड़े हटे हैं, अभी चीनी उसमें गंध लगे हुए हैं, उसमें क्या होगा? इन दोनों की सेवा करने से, भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत की सेवा करते 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 भगवती उत्तम श्लोके, उत्तम श्लोक जो भगवान है, भक्ति भवति नैष्ठिकी, तब भक्ति निष्ठा नैष्ठिकी होती, पहले इसके पहले निष्ठिकी भी भक्ति नहीं होती है, फिर कैसे होगी निष्ठा नैष्ठिका? पहले क्या होते अनिष्ठिका, कैसे भजन करूं गृह रह करके या त्यागी बन करके, बुद्धि स्थिर नहीं कर पाता, फिर यहां आने पर कुछ दिनों के बाद में विचार करेगा कि भाई ऐसे ऐसे जगत में बातें हो रही हैं, हमारा अंत में क्या होगा, भजन करके कहां रहूंगा, कौन देखेगा, गुरुजी जब तक हैं तब तक तो वैसी कोई बात नहीं, और इसके बाद में हमारा क्या होगा, अभी से कुछ और व्यवस्था, इसलिए मठ में रहूं कि मठ को छोड़ दूं, या क्या जाने क्या होगा, घर वाले भी लोग ऐसा सोचते हैं, कैसे करूं क्या करूं समझ में नहीं आता, लड़कियां सोचेंगी कि विवाह करूं कि ना करूं, भक्ति होने देगी कि नहीं होने देगी, बस चिंता में बस चिंता ही चिंता आ गई भगवान का। अरे तुम भगवान का भजन तो करो निष्ठा के सहित में, देखो जो जो होने वाला होगा तो होगा ही, जो उसके लिए चिंता करके अभी से मरने की कोई जरूरत नहीं, मत चिंता करो। तब वो निष्ठिकी नैष्ठिकी होगी, नैष्ठिकी होने पर निश्चित हो जाएगी भगवान हमारा पालन पोषण करने वाला है, दूसरा बीज को ब्रह्मांड में नहीं, हमारी समस्त विपत्तियों से रक्षा करने वाले वो प्रभु हैं, वो मरते नहीं हैं, उनकी करोड़ों आंखें हैं, हम विपत्ति में हैं उनका भजन करने वाला, वो देखते नहीं है, फिर भी कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं, उसी के लिए वो बतलाएंगे यहां पर। देखो तदा रजस्तमो भावा, काम क्रोध लोभ आदयश्च जे चेतन एतै अनाविद्धं स्थितं सत्ते प्रसीदति। कितना हो गया?
5 मिनट बाकी है,
6 बजने में कि 7 बजने में?
6 बजे
कला छोड़ रात हो जाएगी, 7 होने जा रहा है। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है भजन करने वालों लोगों के लिए, जो भजन में शुद्ध भजन में प्रवेश करना चाहते हैं भाई, इनको खूब मन से सुन करके और ऐसे ही एकांतिक और भक्त और भागवत दोनों भागवतों की सेवा करो। और वो कैसे धीरे धीरे जाता है, दूर होता है, और कैसे भगवान में एकांत की भक्ति आती है, इन सब श्लोकों का विचार करके और वैसे ही भजन करो, देखो जरूर भक्ति होगी। अभी जो भक्ति है इसको भक्ति नहीं भी कह, भक्ति भी कह सकते हैं किंतु यथार्थ नहीं, अभी चंचल है। भक्ति नहीं होने से हमारी चंचलता नहीं होगी, किंतु ये सब संसारिक जो चीजें हैं ना, एक मोटर खरीदा और मोटर कहीं चली गई, कोई ले लिया बस, कोई गाय खरीदी और गाय कोई लेकर के चला गया, हमारा कोई चीज चोरी कर लिया, तुम्हारा क्या लिया, इसलिए ये सबको दूर हो जाने पर निष्ठ की भक्ति होगी, तब भजन होता है। ऐसे ही कल तिलक कर लिया, गले में माला लगा ली और थोड़ा सा ठाकुर जी की पूजा जय जगदीश हरे और जब हमारे सब दुख दूर करो
संकट
हरो, बस कर दिया, ये भक्ति नहीं भाई, निष्ठा होनी चाहिए उसे, प्रबल निष्ठा, अब बदले आज यहीं तक रहे, कल इसका बाकी जो है। अरे ननुमल है,
हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा
राम 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 हरे हरे।